इतिहास कला साहित्य की शाखा है। वैज्ञानिक विधियों से परिष्कृत होने के बावजूद अधिकांश इतिहासकारों की अवधारणा है कि इतिहास कला अथवा साहित्य की शाखा है। आई ए रिचर्ड्स अपनी लोकप्रिय पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कहा है कि कला संप्रेषण प्रक्रिया का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस परिदृश्य में इतिहासकार द्वारा अपने प्रमुख लक्ष्य इतिहास की उपेक्षा न्यायोचित है। इस महान विद्वान का वाक्यांश इतिहास लेखन के संबंध में स्वीकार किया जा सकता है, परंतु इतिहास को कलात्मक स्वरूप प्रदान करने का अभिप्राय इतिहास को अपने लक्ष्य से वंचित रखना यथोचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि इतिहास के यथार्थ स्वरूप को कलात्मक अभिव्यक्ति ही कला का प्रमुख लक्ष्य तथा उद्देश्य होना चाहिए। इससे विमुख होना इतिहासवाद की दरिद्रता होगी। रेनियर का अभिमत है कि इतिहास कला है तथा एक कलाकार की भांति इतिहास का समाज की सेवा कर सकता है। हेनरी पीरेन ने अपने एक प्रकाशित लेख 1897 में कहा था कि इतिहास प्राचीन काव्य है तथा काव्य के रूप में हमारे स्वभाव की आवश्यकताओं के अनुरूप है। मानवीय स्वभाव की आवश्यकताओं की पूर्ति काव्य तथा इतिहास द्वारा होती है। प्रोफेसर गालब्रेथ ने अपनी पुस्तक वाई वी स्टडी हिस्ट्री में स्पष्ट रूप से कहा है कि इतिहास का अध्ययन व्यक्तिगत विषय है जिसमें प्रक्रिया परिणाम की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। प्रक्रिया का अभिप्राय कलात्मक इतिहास लेखन है, परिणाम की उपेक्षा संबंधी गालब्रेथ का भय निराधार है, क्योंकि इतिहास का स्थान काल तथ्य तथा साक्ष्य की सीमाओं में बंधा रहता है। ऐसी परिस्थिति में परिणाम की उपेक्षा संभव नहीं है। इतिहास की अतीत के प्रति प्रेम के अभिव्यक्ति का कलात्मक प्रस्तुतिकरण इतना रोचक और आकर्षक होता है कि लिडेन प्रोफेसर बुसमेकर ने स्पष्ट कहा है कि इतिहास मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी साहित्य के प्रख्यात विद्वान हेजलेट ने महान दार्शनिक रूसो के संबंध में लिखा है कि वह अपनी कृति कॉन्फेशन में अतीत की घटनाओं की मधु बूंदों ड्रॉप्स ऑफ हनी ड्रीम को इस प्रकार एकत्रित करते हैं कि उससे बहुमूल्य आनंदमय मादक शराब निर्मित कर सके। इस प्रकार अतीत संबंधी अनुभव का साहित्यिक शैली में प्रस्तुतिकरण इतना रोचक पृष्ठ संख्या 98 तथा आनंददायक होता है जैसा कोई व्यक्ति वसंत ऋतु के अंत में एक ग्रामीण उद्यान में बैठकर सुंदर पुष्पों के मादक सुगंध का आनंद प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार सभी विद्वानों ने इतिहास के कलात्मक स्वरूप का समर्थन किया है। अनातोले फ्रांस एक प्रख्यात साहित्यकार महान कवि कुशल आलोचक तथा कला के अद्वितीय प्रेमी थे। उन्हें अतीत की परंपराओं तथा अपनी मातृभूमि से लगाव था। इतिहास उनका रोचक विषय था। रेनियर ने उनके विषय में लिखा है कि उनकी शैली काव्यात्मक है। अनातोले फ्रांस का अभिमत है कि इतिहास विज्ञान नहीं अपितु एक कला है। कल्पना के माध्यम से ही उसको सफल बनाना संभव है। उन्होंने साक्ष्यों पर विश्वास अपनी रुचि तथा भावना के आधार पर किया है। वे आजन्म कला के प्रगाढ़ पुजारी तथा ऐतिहासिक यथार्थता के निराश एवं असंतुष्ट प्रेमी थे। 1903 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें समाजवादी स्वप्नलोकीय विचार ऐतिहासिक गवेषणा की विधाएं तथा इतिहास दर्शन पर विस्तृत प्रकाश डालने का सराहनीय प्रयास किया है। उनका अभिमत है कि भूगोल तथा तिथि क्रम इतिहास के दो नेत्र होते हैं। मानवीय स्वभाव संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति काव्य तथा इतिहास द्वारा संभव है। दार्शनिक इतिहासकार क्रोचे के ने कला के स्वरूप तथा उद्देश्य का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनके अनुसार कला न तो आनंद के आदान प्रदान का साधन है और न प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, बल्कि यह व्यक्तिगत अंतर्ज्ञानात्मक दृष्टि की अभिव्यक्ति है। कलाकार के इस विशिष्ट प्रस्तुतिकरण को सभी लोग उसी रूप में देखते हैं। कला इस प्रकार भावनाओं की प्रक्रिया नहीं अपितु कला कलाकार के ज्ञान की अभिव्यक्ति है। क्रोचे के अनुसार इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य अतीत कालिक तथ्यों का कलात्मक एवं साहित्यिक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। इस प्रकार कला भावनाओं की अभिव्यक्ति मात्र ही नहीं बल्कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। निश्चित रूप से इसका ज्ञान व्यक्तिगत तथा विशिष्ट है। एक वैज्ञानिक प्राकृतिक तथ्य का अवलोकन मात्र करता है। इतिहासकार एक कलाकार के रूप में अनुभव करता है। इतिहासकार तथा कलाकार में यही सामंजस्य है। इतिहास एक अत्यंत लोकप्रिय कला है। समानता के साथ साथ दोनों में अंतर भी है। कला में संभावनाओं का वर्णन होता है, इसके विपरीत इतिहास में यथार्थता का प्रस्तुतिकरण है। डिल्थे ने 1883 तथा सिमेल ने 1892 में इस गंभीर विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला है। पृष्ठ संख्या 99। संज्ञानात्मक प्रस्तुतिकरण के आधार पर संभावना तथा यथार्थता में अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। एक कलाकार अपने विशिष्ट ढंग से प्रकृति को देखकर उसका प्रस्तुतिकरण करता है। उसका उत्तरदायित्व प्रकृति पर नहीं कलाकार पर होता है, क्योंकि वह अपनी दृष्टि से देख उसके दृश्य को अपने ढंग से प्रस्तुत करता है। इतिहासकार ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर घटनाओं की अनुभूति अपने मस्तिष्क में करता है। उसका प्रस्तुतिकरण मानसिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। डिल्थे के अनुसार इतिहासकार द्वारा अपने मस्तिष्क में अतीत को पुनर्जीवित करने का तात्पर्य अपने व्यक्तित्व को विकसित करना है। वॉल्स ने इतिहासकार तथा कलाकार में समानता तथा अंतर को स्पष्ट किया है। एक कलाकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति में साधनों पर विशेष ध्यान नहीं देता। वह चित्र के प्रस्तुतिकरण में कला के नियमों का अनुकरण नहीं करता, क्योंकि कला संबंधी स्पष्ट नियमों का प्रतिपादन आज तक नहीं किया गया है। परंतु एक इतिहासकार तथ्यों के वर्णन में वस्तुनिष्ठ साधनों का प्रयोग करता है। साधनों का प्रयोग दोनों अपने अपने ढंग से करते हैं। क्रोचे के अनुसार इतिहास तथा कला में यही अंतर है, जिसे वास्तविकता तथा अवास्तविकता कहा जा सकता है। एक कलाकार चित्र के प्रस्तुतिकरण में यथार्थता पर विशेष ध्यान नहीं देता है, परंतु इतिहासकार के लिए यथार्थता की अनिवार्यता तथा अपरिहार्यता होती है। इतिहास कला है। कार्ल पियर्सन के अनुसार कलात्मक शैली को भी विज्ञान का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है, क्योंकि कला से ज्ञान को दक्षता प्रदान की जाती है। कला की अभिव्यक्ति का प्रेरणा स्रोत है। विज्ञान तथा कला का संबंध मछली एवं पानी, मनुष्य एवं वातावरण जैसा होता है। G.R. एल्टन का अभिमत है कि इतिहास कला है। इतिहास लेखन को वैज्ञानिक विधियों से परिष्कृत करने के बावजूद उसके प्रस्तुतिकरण व्याख्या में कलात्मक शैली की नितांत आवश्यकता होती है। लेखन एक मनुष्य तथा इतिहासकार के रूप में अपनी शैली में अतीत का कल्पनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। वह मैकाले, गिबन तथा ट्रेवेलियन की शैली का अनुकरण नहीं कर सकता और न उसे करना चाहिए। वह जो कुछ भी लिखता है वह दूसरे के पढ़ने के लिए होता है। जिस प्रकार प्रत्येक युग में इतिहास लेखन समसामयिक दृष्टि से किया जाता है, उसी प्रकार इतिहासकार के लेखन में उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण निर्णायक तत्व होता है। इसमें यथार्थता के साथ विवरण संबंधी कुशलता, रोचकता, दृष्टांतों का चयन तथा चरित्र चित्रण की विशेषताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस गंभीर अर्थ में इतिहास निश्चित रूप से कला है। यदि इतिहास को वैज्ञानिक पृष्ठ संख्या 100 विधियों से परिष्कृत करके अध्ययन किया जाए तो इतिहास नीरस एवं अत्यंत दुरूह बन जाता है। परिणामस्वरूप इतिहास का अध्ययन कोई भी पसंद नहीं करेगा। ऐतिहासिक कल्पना के विषय में कॉलिंगवुड ने लिखा है कि इतिहास अतीत में मानवीय कार्यों का अध्ययन होता है। इतिहासकार एलिजाबेथ मार्लबरो, पिलोयनीसियन युद्ध, फर्डिनेंड तथा इजाबेला की नीति का अध्ययन करता है। इतिहास की उपयुक्त घटनाएं विलुप्त हैं। इन्हें न तो इतिहासकार देख सकता है और न कोई अन्य व्यक्ति। किसी युद्ध में बम विस्फोट तथा गोलाबारी आदि की घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से दृश्य नहीं है, परंतु इतिहासकार इन सभी घटनाओं की अनुभूति अपने मस्तिष्क में करता है। घटनाओं तथा मानवीय कार्यों की उपलब्धियों का एक परिकल्पनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। इसके इस परिकल्पनात्मक प्रस्तुतिकरण को ऐतिहासिक कल्पना कहते हैं। वह अपनी रोचक तथा साहित्यिक शैली से कल्पनात्मक वर्णन को आकर्षक बनाने का प्रयास करता है। मैकाले ने इसके महत्व को स्वीकारते हुए लिखा है कि इतिहास का आनंद विदेश परिभ्रमण के समान होता है। जिस प्रकार यात्रियों को भ्रमण कराने वाला व्यक्ति उन्हें नगर के सुंदर स्थानों को दिखाकर उनके मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ता है, उसी प्रकार इतिहासकार पाठक को अतीतकालिक समाज में भ्रमण कराता है। तत्कालीन समाज की वेशभूषा, अभिव्यक्ति के साधनों, रीति रिवाज, सामाजिक कानून, विधि, धर्म तथा नैतिकता आदि से अवगत कराता है। यह पाठकों के मस्तिष्क पर अतीतकालीन समाज की एक अमिट छाप छोड़ता है। यह इतिहासकार की कुशलता पर निर्भर करता है कि वह पाठक को अतीतकालीन समाज में परिभ्रमण कराकर उसके मस्तिष्क को कितना प्रभावित कर पाता है। यदि इतिहासकार में कलात्मक बोध का अभाव है तो वह अपने पाठक को सभी तथ्यों से अवगत कराने में असफल नहीं होगा। इसका यह परिणाम हो सकता है कि वह अपने अथक प्रयास के बावजूद पाठक के मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव न डाल सके। यदि इतिहासकार में कलात्मक प्रतिभा है तो वह पाठक को राजमहलों का अवलोकन कराने के पश्चात सामान्य जनसमूह के बीच परिभ्रमण कराकर व्यक्तियों के कार्यों और उसके मनोरंजन के साधनों को भी दिखाने का प्रयास करेगा। जन सामान्य के रसोई घर तथा कॉफी हाउस में प्रवेश कर तत्कालीन समाज के सूक्ष्म दृश्यों का अवलोकन कराएगा। परिणामस्वरूप पाठक राजमहल के विलासमय तथा वैभवपूर्ण जीवन के साथ साथ जन सामान्य की झोपड़ियों तथा रसोई घर की दशा का भी ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। यही कारण है कि मैकाले जैसे इतिहासकारों ने अपनी रचना को अत्यधिक रोचक पृष्ठ संख्या 101 बनाने का प्रयास किया है। जिस इतिहासकार में इतिहास लेखन की यह उत्कृष्ट कल्पना हो, उसका इतिहास निश्चित रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय होगा। मैकाले तथा कार्लायल की लोकप्रियता का यही रहस्य है। इस प्रकार इतिहास के अंतस्तल की अभ्यर्थना परिकल्पनात्मक होती है, यह सत्य है। परंतु इतिहासकार कल्पना और कवि की कल्पना में अंतर है। कवि की कल्पना असीमित है, वह क्षण भर में विश्व तथा अंतरिक्ष का भ्रमण कर सकता है। स्वर्ग का सुख तथा नरक का दुख यथार्थ इसलिए है नहीं है क्योंकि इसका वास्तविक अनुभव किसी ने नहीं किया, बल्कि यह कोरी कल्पना है। यथार्थता इतिहासकार की कसौटी है। इतिहासकार साक्ष्यों के आधार पर ऐतिहासिक तथ्यों को काव्यात्मक शैली के माध्यम से प्रस्तुत करता है। उसकी रचना यथार्थ प्रधान होती है, कल्पना प्रधान नहीं। वृंदावनलाल वर्मा का उपन्यास झांसी की रानी, भगवती चरण वर्मा की रचना चित्रलेखा का आधार ऐतिहासिक है, परंतु उनकी रचनाएं कल्पना प्रधान हैं। उनमें यथार्थता का स्पष्ट अभाव दिखाई देता है। एक इतिहासकार काव्यात्मक शैली के माध्यम से यथार्थता का चित्रण कल्पना के परिवेश में करता है ताकि पाठक उस काल के सजीव दृश्य का दर्शन कर सके। कवि तथा इतिहासकार में यही अंतर है। एल्टन के अनुसार परिकल्पना का आधार इतिहासकार का ऐतिहासिक सामग्री के बीच अनवरत परिसंवाद होता है। इतिहासकार स्थान तथा समय की परिधि में बंधा है। यदि कोई इतिहासकार अकबर के समय में फतेहपुर सिकरी का अध्ययन कर रहा है तो उसे समय तथा स्थान का ध्यान रखना होगा। वह फतेहपुर सिकरी का वर्णन करते हुए लखनऊ, काशी तथा प्रयाग का वर्णन नहीं कर सकता है। इतिहासकार कल्पनात्मक शैली का प्रयोग ऐतिहासिक तथ्यों की क्रमबद्धता तथा अतीत के पुनर्निर्माण के लिए करता है। इतिहासकार की यही अनिवार्यता और बाध्यता है कि है, और कवि अपनी रचना को प्रभावी बनाने के लिए इस बाध्यता से मुक्त है। फ्रायड ने भी कल्पना के विषय में लिखा है, अतीत हम तक पहुंच नहीं सकता, परंतु हमारी कल्पना उसमें प्रवेश कर सकती है। अतीत का छायाचित्र मात्र हमारे समक्ष तैरता हुआ दिखाई देता है कि जीवितावस्था में अतीतकालिक मनुष्य किस प्रकार थे। संभवतः चर्च की घंटियों की ध्वनि विनष्ट जगत की ध्वनि की भांति हमारे कानों में गूंजती है। रेनियर के अनुसार इतिहास प्रेम की अभिव्यक्ति है, उसमें सौंदर्य ही नहीं अपितु मार्मिक तत्व भी है, क्योंकि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में यह जीवन प्रेम की अभिव्यक्ति है। इतिहासकार तथ्यों के संकलन तथा विश्लेषण के पश्चात अतीत का चित्रण समाज के समक्ष सुव्यवस्थित भाषा में साहित्यिक तथा कल्पनात्मक शैली के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कथा वस्तु के प्रस्तुतीकरण में वह अपनी बौद्धिक कुशलता का प्रयोग करता है। उसे सामाजिक आवश्यकता का भी ध्यान रखना पड़ता है। सामाजिक रुचि का प्रभाव उसके इतिहास लेखन पर पड़ता है। वह सुस्पष्ट भाषा, शुद्ध व्याकरण, सरल वाक्यों का प्रयोग करता है। तथ्यों का पुनर्निर्माण स्पष्ट तथा ग्राह्य होना चाहिए। भाषा की शुद्धता तथा ऐतिहासिक तथ्यों की यथार्थता की इतिहास की कठौती है। तथ्यों की यथार्थता ही इतिहास की कसौटी है। अनावश्यक तथ्यों का समावेश इतिहास को अरुचिकर बना देता है। इतिहास में परित्याग तथा चयन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ ओमिशन एंड सिलेक्शन इन हिस्ट्री, इतिहास में एक कुशल कलाकार की भांति चयन तथा परित्याग कला का गुण परमावश्यक है। चयन तथा परित्याग प्रक्रिया में इतिहासकार की अंतश्चेतना की निर्णायक भूमिका होती है। 19वीं सदी के इतिहासकारों की अवधारणा थी कि इतिहास में अधिकाधिक ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। एक बार लॉर्ड एक्टन के गुरु प्रोफेसर डालिंजर ने उससे कहा था कि 40 वर्ष की अवस्था के बाद भी उसने अभी तक किसी इतिहास की पुस्तक की रचना नहीं की। लॉर्ड एक्टन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया था कि वह जब कभी लेखन कार्य के विषय में सोचता है तो अनुभव करता है कि उसके तथ्य अभी भी अधूरे हैं। इस प्रकार एक्टन का विश्वास अपनी रचना में अधिकाधिक तथ्यों के समावेश में था। प्रोफेसर डॉलिंजर ने उसे सुझाव दिया कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही अपना रचना कार्य समाप्त करे। इस सुझाव के आधार पर एक्टन ने रचना कार्य प्रारंभ कर इंग्लैंड के इतिहासकारों में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। ऐतिहासिक तथ्यों में से आवश्यक तथ्यों का चयन तथा अनावश्यक तथ्यों के परित्याग का गुण होना चाहिए। तमरा कर्शाविना ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि उसे सर्ज डियाग्ली उसे सर्ज डियागिलेव का को सुझाव दिया था कि परित्याग कला का सार तत्व है। अनावश्यक तथ्यों से इतिहासकार की रचना इतनी अस्पष्ट तथा दुरूह हो जाएगी कि कोई भी पाठक उसकी नीरस रचना का अध्ययन नहीं करेगा। इतिहास लेखन में अधिकाधिक तथ्यों का समावेश गुण नहीं अपितु एक दोष होता है। इस संबंध में लिटन स्ट्रैची की अभिव्यक्ति सराहनीय है। उनका अभिमत है कि विस्मरण इतिहास लेखन की प्रथम आवश्यकता है। विस्मरण जो इतिहास को सरल तथा सुस्पष्ट बना सके तथा आवश्यक तथ्यों के चयन और अनावश्यक तथ्यों के परित्याग में सहायक हो सके। इतिहासकार का कार्य कुशल कलाकार मालिक के कार्य में मेल खाता है। जिस प्रकार पृष्ठ संख्या 103 सुंदर उद्यान का मालिक उद्यान को सुंदर रोचक तथा आकर्षक बनाने के लिए अनावश्यक पौधों को काट कर फेंक देता है, तथा आवश्यक पौधों को निरंतर रोपण करता है। भारतीय राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मुगल उद्यान सुंदरता की दृष्टि से अद्वितीय है। उसकी सुंदरता का श्रेय मालिक को है। उसी प्रकार इतिहासकार अपनी रचना को रोचक बनाने के लिए आवश्यक तथ्यों के आधार पर साहित्यिक तथा काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। चयन तथा परित्याग प्रक्रिया विशुद्ध रूप से तार्किक प्रक्रिया नहीं है। इतिहासकार जब चयन परित्याग प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह स्वयमेव अपने को साहित्य जगत में पाता है। वह कलाकार की भांति अतीत के तथ्यों के आधार पर साहित्यिक शैली का प्रस्तुतीकरण करता है। इस दुनिया में मैकाले, गिबन, मोटले, कार्लाइल, वॉल्टर स्कॉट उच्च कोटि के कलाकारों की श्रेणी में रखा जाता है। मैकाले ने कहा था कि उन्हें अपनी रचना से तब तक संतोष नहीं होता होगा जब तक उनकी रचना उनकी रोचक रचना नवयुतियों के टेबल से नवीनतम उपन्यास को हटाकर उनकी आकर्षक इतिहास रचना को न पढ़ें। इस प्रकार उनकी रचनाएं साहित्य की सुंदरतम कृतियां हैं। उनकी रचनाएं सर्वत्र सौंदर्य शास्त्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। इन महान इतिहासकारों ने अंधकार में अतीत के महापुरुषों की जीवनी को सजीव बनाने का यथाशक्य सराहनीय प्रयास किया है। मैकाले जैसे इतिहासकार में इतिहास लेखन की उत्कृष्ट कल्पना ने उनकी रचनाओं को सर्वाधिक लोकप्रिय बना दिया। उन इतिहासकारों की रोमांटिक युग में लोकप्रियता का यही रहस्य है। E.H. कौर ने इस अवधारणा की कटु आलोचना की है। यदि इतिहासकार में एक कलाकार की भांति चयन करने का गुण नहीं है तो सफल इतिहासकार नहीं हो सकता। एक कलाकार की विशेषता है कि वह अनावश्यक तथ्यों का परित्याग करता है तथा आवश्यक तथ्यों को यथोचित स्थान देता है। इतिहासकार में भी ऐसे गुण की अपेक्षा की जाती है। लिटन स्ट्रेसी के अनुसार विस्मरण शक्ति इतिहासकार का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। विस्मरण शक्ति जो उसके विषय को साधारण तथा सुस्पष्ट बना सके, यदि इतिहासकार में यह गुण नहीं है तो उसका विषय अस्पष्ट तथा दुरूह हो जाएगा। रूस की राज्य क्रांति 1917 ईस्वी के कारणों की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा धार्मिक व्याख्या में यदि इतिहासकार स्मृति के आधार पर एक कारण की व्याख्या करने के पश्चात उससे संबंधित तथ्यों का समावेश दूसरे तीसरे तथा चौथे कारणों में करता है तो उसका इतिहास अत्यंत जटिल दुरूह तथा अस्पष्ट हो जाएगा। अतः इतिहासकार को आवश्यक तथ्यों का समावेश क्रमबद्धता के आधार पर करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 104 परिकल्पना इमेजिनेशन। इतिहास को तथ्य तथा कल्पना का सुंदर सम्मिश्रण कहा जा सकता है। ऐतिहासिक तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में कल्पना का वैसा ही स्वरूप है जैसे समुद्र तट पर समुद्र के बीच पाषाण शिला। ट्रेवेलियन ने उचित ही कहा है कि अंतस्तल में इतिहास की अभ्यर्थना परिकल्पनात्मक है। यथार्थता ऐतिहासिक अध्ययन की कसौटी है। इसकी उत्प्रेरक पुनरावेदन काव्यात्मक है। इतिहास की उत्प्रेरणा अपने पूर्वजों को उसी रूप में देखना तथा उनके दिन प्रतिदिन के व्यवसाय तथा आमोद प्रबोध के साधनों का प्रत्यक्ष अवलोकन करना है। इतिहासकार अपनी मानसिक रचना के माध्यम से अतीत का काल्पनिक चित्रण करके समसामयिक समाज को उसका अवलोकन कराता है। इस प्रकार इतिहास के अंतस्थल की अभ्यर्थना परिकल्पनात्मक होती है। यह अवधारणा सत्य है परंतु इतिहासकार तथा कवि कल्पना के अंतर हैं। कवि तथा साहित्यकार की परिकल्पना असीमित है। कवि क्षीर सागर में भगवान विष्णु लक्ष्मी का नाग सैया पर शयन तथा स्वर्ग के सुख तथा नरक के दुख का काल्पनिक अनुमान कर सकता है परंतु यह यथार्थ तथा साक्ष्यों पर आधारित कल्पना नहीं अपितु निराधार कोरी कल्पना मात्र है। संस्कृत साहित्य के शेक्सपियर कालिदास का मेघदूत पूर्ण रूपेण काल्पनिक चित्रण है जिसे साक्ष्यों की कसौटी पर यथार्थ सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार क्षीर सागर मंदराचल पर्वत को विशाल नाग वासुकी को रसी बनाकर समुद्र मंथन तथा स्वर्ग के सुख तथा नरक के दुख को न तो किसी ने देखा और न अनुभव किया है। यथार्थता इतिहास की कसौटी है। इतिहास का साक्ष्य तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अतीतकालिक घटनाओं महापुरुषों के कार्यों तथा उपलब्धियों का काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत करता है। यही नहीं वह सामाजिक समाज का सजीव दिग्दर्शन कराता है। ऐतिहासिक तथ्य प्रायः नीरस तथा निर्जीव होते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सारनाथ के भग्नावशेष शिलालेख अभिलेख मुद्राएं खंडित मूर्तियां ईंट पत्थर के टुकड़ों की निरसता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु इतिहासकार अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति से निर्जीव ऐतिहासिक तथ्यों को सजीव एवं रोचक बनाकर पाठक के हृदय में अतीत के अध्ययन के प्रति अद्भुत रुचि का सरल सृजन करता है। अनेक तथ्यों का समावेश उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। अनेक निरस तथा निर्जीव तथ्यों का यथावत प्रस्तुतिकरण का अभिप्राय इतिहास को निरस तथा निर्जीव बनाना होगा। ऐसी दशा में इतिहास अत्यंत दुरूह और नीरस बन जाएगा और उसे पढ़ने का कोई प्रयास नहीं करेगा। सेरिडन ने उचित ही कहा है, साधारण तथा सरल लेखन का अभिप्राय विषय को कठिन, दुरूह तथा नीरस बनाना होगा। पृष्ठ संख्या 105। इतिहास में नीरस तथा निर्जीव तथ्यों का अधिकाधिक समावेश विषय को अपठनीय बना सकता है। ट्रेवेलियन ने स्पष्ट लिखा है कि निर्जीव अतीत को सरल, रोचक तथा काव्यात्मक बनाने के लिए इतिहासकार को मैकाले की रचनाओं से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। उसके अनुसार इतिहास लेखन की योजना बनाते समय यह निश्चित करना चाहिए कि किस प्रकार रोचक ढंग से एक विषय से दूसरे विषय तथा एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में पाठक को प्रवेश कराना चाहिए। साहित्यिक विधियों से युक्त मैकाले की रचनाएं अद्वितीय हैं, अतः वर्णनात्मक इतिहास लेखन वाले इतिहासकारों को मैकाले की रचनाओं का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अपनी साहित्यिक तथा कलात्मक रोचक शैली के कारण आज मैकाले को सफल इतिहासकारों की श्रेणी में उच्च स्थान प्राप्त है। यद्यपि गिबन अपने अथक प्रयास के बावजूद मैकाले जैसे सम्मान न प्राप्त कर सके और न विद्वत समाज को आकृष्ट करने में सफल हो सके, उसका प्रमुख कारण उनकी कृतियों में रोचक साहित्यिक शैली का अभाव है। अतीत का निरस निर्जीव तथा यथार्थ प्रस्तुतिकरण बौद्धिक परिपक्वता के अभाव में संभव नहीं है। अभी तक कल्पना शक्ति के अभाव में कोई भी इतिहासकार सफलता के उच्च शिखर पर नहीं पहुँच सका है। ऐतिहासिक परिकल्पना के विषय में कॉलिंगवुड का अभिमत है कि इतिहास अतीतकालिक मानवीय कार्यों तथा उनके विचारों का अध्ययन है। इतिहास के नेपोलियन बोनापार्टा, एलिजाबेथ, मार्लबोरो, बिस्मार्क, हिटलर तथा मुसोलिनी की उपलब्धियां तथा नीतियां विलुप्त हो चुकी हैं। उनसे संबंधित अतीतकालिक घटनाओं को न तो इतिहासकार स्वयं देख सकता है और न समसामयिक समाज को दिखा सकता है। भारतीय इतिहास में गुप्तकालीन स्वर्णयुग तथा शाहजहां कालीन स्वर्णयुग का सजीव चित्र अपनी लेखनी द्वारा साहित्यिक एवं काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत करके वर्तमानकालीन मनुष्यों के हृदय में गौरवपूर्ण अतीत के प्रति प्रेम जागृत करने में अद्भुत सफलता प्राप्त की है। इतिहासकार अतीत की उपलब्धियों का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, परंतु उस गौरवपूर्ण अतीत का एक काल्पनिक चित्र बनाकर अपनी लेखनी द्वारा समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। इतिहास अतीत से वर्तमान तक प्रगति के मापन का एकमात्र यंत्र है। इतिहास के अभाव में समाज वैसा ही प्रतीत होता है जैसे स्मरण शक्ति के अभाव में मनुष्य। अतः यह स्पष्ट है कि मानव प्रगति का एकमात्र यंत्र इतिहास मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः उसकी रचना इतनी रोचक, आकर्षक तथा कलात्मक हो कि समाज का पृष्ठ संख्या 106 प्रत्येक व्यक्ति उससे अपने अतीत तथा पूर्वजों की उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त कर सके। वर्तमान का आविर्भाव अतीत के गर्भ से हुआ है, अतः वर्तमान की आधारशिला अतीत है। 20वीं सदी में भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि तैयार करने में गौतम बुद्ध, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष, अकबर, शिवाजी, डलहौजी, रिपन, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य अपनी रोचक साहित्यिक शैली में इन महान विभूतियों की गौरव गाथा को प्रस्तुत करना चाहिए। यह सत्य है कि ऐतिहासिक तथ्य स्वयमेव इतिहास नहीं बल्कि निर्जीव अवशेष, अस्थि पंजर उपादान होते हैं। सारनाथ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा द्वारका की खुदाई में प्राप्त निर्जीव अस्थि पंजर मात्र होते हैं। यह इतिहासकार की विशेषता है कि अपनी परिकल्पना परिकल्पना के माध्यम से उन निर्जीव तथ्यों के आधार पर अतीत के एक सजीव चित्र को मांसल युक्त बनाकर उसमें रक्त का संचार करता है और समसामयिक समाज को मधुर रसपान कराता है। इस प्रकार काल्पनिक पुनर्रचना संबंधी विधियों का प्रयोग नाटककार, उपन्यासकार तथा इतिहासकार करता है। ऑस्कर वाइल्ड का यह वाक्यांश यथार्थ प्रतीत होता है कि प्रतिभावान व्यक्ति ही इतिहास की रचना कर सकता है। प्रतिभावान से उपरोक्त विद्वान का यह अभिप्राय है कि इतिहासकार में कलात्मक गुण की परिपक्वता होनी चाहिए। कलात्मक गुण के आधार पर ही इतिहासकार अनावश्यक तथ्यों का परित्याग, आवश्यक तथ्यों का चयन तथा अस्थिपंजर मात्र तथ्यों के आधार पर परिकल्पना के माध्यम से अतीत का सर्वोत्कृष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। उपरोक्त तथ्यों की विवेचना से यह स्पष्ट है कि परिकल्पना के अभाव में इतिहास का एक वाक्य भी संभव नहीं है। टायनबी का अभिमत है कि एक सफल इतिहासकार में कलात्मक, काव्यात्मक तथा परिकल्पनात्मक शैली का होना अपरिहार्य है। निष्कर्ष: आधुनिक इतिहासकारों की अवधारणा है कि इतिहास में अधिकाधिक वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से इतिहास की उपादेयता तथा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। जहाँ तक इतिहास में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग का प्रश्न है, यह साक्ष्यों के आधार पर ऐतिहासिक तथ्यों के चयन तक सीमित होना चाहिए। अनावश्यक तथ्यों के परित्याग तथा आवश्यक तथ्यों का चयन वैज्ञानिक विधियों द्वारा होना चाहिए, परंतु इतिहास सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल तथा मात्रात्मक आंकड़ों, क्वांटिटेटिव तथ्यों का प्रयोग इतिहास को इतना निरस बना देगा कि कोई व्यक्ति इतिहास अध्ययन को नहीं पसंद करेगा। इतिहास पूर्ण रूपेण काल्पनिक नहीं अपितु ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित अतीत के परिकल्पनात्मक चित्र का प्रस्तुतिकरण है। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित झांसी की रानी तथा भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा यद्यपि ऐतिहासिक विषय के उपन्यास हैं, परंतु उपन्यासकारों ने ऐतिहासिक तथ्यों की पूर्ण उपेक्षा करके काल्पनिक बना दिया है। इतिहासकार साक्ष्यों तथा ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में एक भी वाक्य नहीं लिख सकता। यदि यही इतिहासकार की व्यवस्था होती है, जहाँ तक परिकल्पना का प्रश्न है, यह सभी को विदित है कि ऐतिहासिक तथ्य निर्जीव अस्थिपंजर मात्र होते हैं। इतिहास अपनी परिकल्पना से मांसल युक्त बनाकर उसमें रक्त का संचार करता है। वह अपनी काव्यात्मक तथा साहित्यिक शैली से विषय को इतना रोचक बना देता है कि समसामयिक समाज के सभी व्यक्तियों का ध्यान स्वयमेव पूर्वजों की उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्ति के लिए विवश करता है। ऐतिहासिक तथ्यों की यथावत प्रस्तुतिकरण इतिहास को दुरुस्त तथा निरस बना देगा। अतः इतिहासकारों को गिबन, मैकाले, कार्लाइल, वाल्टर स्कॉट की रचनाओं से प्रेरणा लेकर उनकी साहित्यिक तथा काव्यात्मक शैली का अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार इतिहास विज्ञान तथा कला का सुंदर समन्वय बनकर समाज के लिए उपयोगी बन जाएगा। सभी लोग इतिहास के माध्यम से अतीत के अध्ययन के लिए प्रेरित होंगे। अतीत के अभाव में वर्तमान का ज्ञान असंभव है। अतः अतीत के प्रति वर्तमान समाज की अभिरुचि का सृजन ही इतिहासकार का दायित्व होता है। जर्मनी के सर्वाधिक लोकप्रिय इतिहास की सफलता का एकमात्र कारण उनकी काव्यात्मक तथा साहित्यिक शैली है। वैज्ञानिक विधियां परित्याज्य नहीं है, परंतु इतिहास रचना में काव्यात्मक तथा साहित्यिक शैली अपरिहार्य है। इस प्रकार नेवूर की रचनाओं में कलात्मक शैली तथा वैज्ञानिक विश्लेषणों का अद्भुत समन्वय सर्वत्र परिलक्षित होता है। नेवूर ने स्वयं कहा है कि मैं एक इतिहासकार हूं क्योंकि विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों को श्रृंखलाबद्ध करके अतीत का एक सजीव चित्र बना सकता हूं। खोई हुई कड़ियों को जानकर उनकी मूर्ति की कला भी जानता हूं। जिस प्रकार एक चिकित्सा वैज्ञानिक मानव शरीर का छिद्रान्वेषण करता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों की उपयुक्तता का सूक्ष्म निरीक्षण करता हूँ। इस प्रकार की अभिव्यक्ति इस महान इतिहासकार की कलात्मक तथा काव्यात्मक शैली का परिचायक है। परिकल्पना के अभाव में अतीत की बिखरी हुई कड़ियों को श्रृंखलाबद्ध करना किसी भी इतिहासकार के लिए संभव नहीं है। आधुनिक इतिहासकारों को इस महान इतिहास रचयिता ने से प्रेरणा लेनी चाहिए। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में A.L. राउत ने स्पष्ट कहा है कि सभी वैज्ञानिक विधियों के सफल नियोजन के पश्चात भी इतिहास सदैव साहित्य की शाखा रहेगा। रेनियर ने भी स्पष्ट कहा है कि गिबन, मोटले तथा मैकाले सफल कलाकार तथा इतिहासकार थे। उनकी रचनाएं विश्व साहित्य में उच्च कोटि की हैं। उन लोगों का पृष्ठ संख्या 108 सर्वोत्कृष्ट योगदान अतीत के प्रति जनमानस के हृदय में उत्कंठा जागृत करना था। ऐतिहासिक रचना का एकमात्र उद्देश्य अंधकार में अतीत में विलुप्त महान विभूतियों को प्रकाश में लाकर मनुष्य के हृदय में उनके प्रति प्रेम का सृजन करना है। इतिहास की कलात्मक तथा साहित्यिक शैली का समर्थन करते हुए रेनियर ने कहा है कि कला एक शाश्वत सुंदर पुष्प है। इस प्रकार इतिहास कला के रूप में सुंदर शाश्वत पुष्प बनकर मानव समाज के आनंद का स्रोत रहेगा। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि तथ्य ऐतिहासिक अध्ययन की कसौटी है तथा इसकी उत्प्रेरक अभ्यर्थना काव्यात्मक है। इस संबंध में दार्शनिक कांत की इतिहास संबंधी अवधारणा ऐतिहासिक यथार्थता की पुष्टि करता है। उनके अनुसार सत्य रहित इतिहास जीवन रहित शरीर है। इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य इतिहास को आख्यानों से निकालकर उसे यथार्थता की आधारशिला पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। इतिहास के सभी भाग पूर्णतः यथार्थ नहीं हो सकते। प्राचीन इतिहास में वर्णित अनेक अप्रत्यक्ष उद्देश्यों का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इतिहास की इन श्रृंखलाओं को इतिहासकार अपने काव्यात्मक कल्पनाओं से सुसज्जित करने का सराहनीय प्रयास करता है। इस प्रकार इतिहास यथार्थता तथा काव्यात्मक शैली का एक सुंदर सामंजस्य है।